تولج الليل فی النہار وتولج النہار فی الليل، اس کا تذکرہ کیوں آیا؟ یہ دو استعارے بھی ہو سکتے ہیں، ایک تو اللہ کی قدرت کا نشان ہے نا. ہم اس دن کہیں جا رہے تھے، ناروے کی بات ہے، شاید میرے لیے 3 ساڑھے 3 کا وقت تھا، تو بالکل اندھیرا تھا نا، اور ظاہر ہے ابھی درس تو اس کے بعد 8 بجے ایک شروع ہونا تھا. تو میں نے گاڑی میں بیٹھ کے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ تھی، میں نے کہا کہ کوئی بڑی طاقت کسی کو بھی بلاؤ اور انہیں کہو کہ ذرا سورج کو دھکا دے کے ادھر کرو، روشنی نکالو. بلب جلا لیں گے، لائٹس جلا لیں گے، سرچ لائٹس جلا لیں گے، لیکن کیا کوئی رات کو اندھیرے میں بدل سکتا ہے، دن میں بدل سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، سورت میرا خیال ہے کہ فاطر میں بھی آتا ہے اور 2 جگہ آتا ہے قرآن پاک میں، سورت زمر میں بھی آتا ہے، کہ اگر اللہ رات کو تمہاری قیامت تک کر دے تو کوئی ہے جو دن کو لے آئے. گرمیوں میں دیکھیے گا، مغرب کا وقت ہو ہی نہیں رہا، 11 بج رہے ہیں، لائیے سورج کو کھینچ کے لے آئیے، نہیں لا سکتے نا. یہی بات ہے جو حضرت ابراہیم نے نمرود سے بھی کہی تھی کہ چل تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے لے آ. دوسری طرف یہ ایک استعارہ ہے دکھ اور سکھ کا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ آج اگر زندگی میں غموں کی رات ہے، ڈونٹ وری، اسی کے اندر سے صبح کی روشنی پھوٹے گی. اور کہتے ہیں نا فارسی کا ایک محاورہ جس کا خلاصہ کیا ہے کہ رات جتنی گھنی ہوتی ہے صبح اتنی قریب ہوتی ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ اذا ضاقت الامر اقتصد، جب معاملہ بڑے ہی تنگ ہو جائے، کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے ہر بندہ میرے خلاف ہو گیا، مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، شوہر بھی بدگمان، بچے بھی ناراض، سسرال بھی، جو بھی ہمارے ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہم کیئر کرتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے یوں ہو رہا ہے. تو جب ایسے آپ حالات کی چکی میں ہو نا، جیسے آپ کو کوئی وہ جس کو آپ کہیے کہ اسکواش کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ اب آپ کا جوس نکلنے والا ہے. جب کبھی اور آپ کو اس دین کے رستے کی کوئی مشکل آئے نا، کورس مشکل ہے، پڑھنا مشکل ہے، ترجمہ مشکل ہے، اسائنمنٹ مشکل ہے، صبح اٹھ کے آنا مشکل ہے، پھر رولز کو ماننا مشکل ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ آپ کے اس وقت آج کل جوسر میں ڈلنے کے دن ہے. پھر اندر سے جو جوس نکلے گا نا، وہ صرف آپ نہیں لیں گے، دوسرے بھی لیں گے. اور اگر ساری چیزوں میں آزاد کر دیا جائے تو پھر دیکھیے آپ کیسے خوبصورت نکلتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں. واللہ واللہ میں ادھر بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گی، پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے، چھوڑیے پڑھاتے ہیں، کوئی زبان سے نہ بتائے تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کی باتوں سے کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے. میں بھی انہیں میں ہی ہوں، کوئی شور مچا کے کہہ دے یہ پڑھاتی ہیں، تو ورنہ تو کس کو پتہ چلتا ہوگا کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں. لیکن انسان ایک ایسے رنگ سے اپنے آپ کو جوڑے کہ جو کم از کم اس کو دکھائے کہ فرق ہے زندگی میں، تم اور دوسرے اور ہیں، تمہاری زندگی بالکل فرق ہونی چاہیے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے. ایک تو جنرل مفہوم ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. زندہ سے مردہ کیسے نکلتا ہے؟ سب سے زیادہ اس کی بہترین مثال مرغی میں سے انڈا. مرغی زندہ ہے، انڈا اپنی جگہ پہ، حالانکہ وہ بھی زندہ ہوتا ہے تبھی تو گرو کرتا ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں. اور مردہ میں سے زندہ، انڈے میں سے مرغی نکلے، سمپل سی مثال ہے. اور مثال ہے، ماں زندہ، بچہ مردہ پیدا ہوا، ماں مر گئی، بچہ زندہ رہ گیا، ہے نا؟ یہ تو ہیں عام مثالیں، لیکن اس کی اور بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں. اگر ہم سوچیں کہ کافر کے گھر میں مومن کیسے، عازر کے گھر میں ابراہیم، اور مومن کے گھر میں کافر کیسے، حضرت نوح کے گھر میں کنان، نوح کا بیٹا کافر ہو گیا. نیکوں کی اولادیں بد، بد کی اولادیں نیک. کہاں کافر ماحول سے آتا ہے، کوئی ایک اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سب کو منور کرتا ہے، اور کوئی ظالم ایسا بھی ہوگا جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کفر پہ چلا جاتا ہے. ایسی کوئی کسی کی کہانی سنا رہا تھا کہ 4 فادرز ور مسلم بٹ شی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلام. ہماری ایک ساتھی ہیں تو انہوں نے بھی ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ ایک دفعہ ان کو کوئی ایسی نارویجین لڑکی ملی، اور کسی بھی طرح لمبی کہانی ہے، لیکن وہ ان کے گھر آئیں تو کہتی کہ میرے گھر میں جائے نماز پڑھا ہوا تھا، تو نماز کا وقت ہے تو پڑھیں گے. تو اس نے کہا کہ آئی نو وٹ از دس، کہنے کی کیا ہے؟ کہتی اس پہ آپ نماز پڑھیں گی ابھی؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے چلا؟ کہتی مائی دادی واز یوز ٹو ڈوئنگ دس، मेरी दादी ये करती होती थी, पता चला वो मुसलमान बाप की और मुसलमान दादी की बात थी। तुम्हें क्या, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, मैं क्या हूँ, लॉस्ट। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। और हम इसको अपने ऊपर लेके देखें, कल तक हमारे दिल मुर्दा थे, हमने इस दुनिया की मोहब्बत में दिलों को बिल्कुल बेचैन किया, अब कुरान का पानी कतरा कतरा ही सही आ रहा है ना दिलों पे, तो दिल जिंदा हो रहे हैं। कल गुनाहों की जिंदगी थी, देखिए कल हम क्या करते थे, डजेंट मैटर। मूसा से तो कत्ल तक हो गया था, फिर नबूवत मिल गई। अल्लाह को ये बिल्कुल परवाह नहीं कि आप कितने गुनाह करके आए, अल्लाह को ये परवाह है कि नेकी का मौका मिला तो आपने नेकी की कि ना की। बल्कि एक रिवायत मशहूर है कि जो जितने ज्यादा गुनाहों से पलट के आता है ना, वो उतना नेक होता है। अल्लाह के नबी की हदीस का खुलासा है कि जो कुफर में स्ट्रांग थे वो इस्लाम में भी स्ट्रांग हुए, और हजरत उमर उसकी मिसाल है। तो कभी अपनी पिछली जिंदगी पे नजर पड़े तो डिप्रेस ना हो बल्कि खुश हो, फिर कल सुनाएं लोगों को मैं कहाँ से आई हूँ। लोगों, मैं तो फोर्थ लेन से निकल के एग्जिट लेन पे आई हूँ। हमने अगर कोई गुनाह किए ही नहीं, चखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता क्या, तो हमें क्या सवाब है उसको छोड़ने का। कई लोग हैं बचपन से दीनदार माहौल है, कभी गाना सुना ही नहीं, तो उनको क्या मजा है, कुरान सुन के मजा आ गया तो ठीक है। जिसने सुनता हुआ गाना अपने आप को छोड़ा, वो कितनी बड़ी बात है। तो हमेशा अपने आप को चेक करें और कभी अपने गुनाहों को दलील बनाकर अपने आप को पीछे ना करें। वतरज़ुकु मन तशाउ बगैर हिसाब, और तो रिस्क देता है जिसको चाहता है बे हिसाब। गोया कि एक इंसान अल्लाह ताला के सामने अपने आप को पेश करता है कि जिस चीज़ को दूसरों से मांगती हूँ वो सब कुछ तो तेरे हाथ में है। अब यहाँ रिस्क में क्या माल दौलत का रिस्क है सिर्फ? नहीं, इज्जतें भी रिस्क, मोहब्बतें भी रिस्क, रिश्ते भी रिस्क, चाहते चाओ तमन्नाएं, हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं। शोहरत अगर कोई चाहता है ना, वो भी रिस्क है। मोहब्बत, फेमस होना, ये अपने अपने गम होते हैं। किसी को एक चीज़ पसंद है, किसी को दूसरी। प्रोमिनेंट होना चाहते हैं, क्यों उल्टे सीधे काम करते हैं बाज़ दफ़ा कि प्रोमिनेंट हो जाए। अल्लाह कहता है मैं दूंगा, आओ तो सही। तुम दीन लेने आओ, तुम दुनिया अपने दोनों हाथों में लेके यहाँ से पलटोगे, ये अल्लाह का वादा है। आप तुफ तुफ करते हैं उस दौलत को जो आपके कदमों में बिल्कुल एक हेच होके पड़ जाती है। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दुनिया के पीछे भागते हैं लेकिन दुनिया उनसे आगे भागती है। जितना इस दुनिया के पीछे भागेंगे ये उतना आपसे आगे भागेगी, जितना आप आखरत की तरफ भागेंगे ये दुनिया खुद आपके पीछे आ जाएगी, ये अल्लाह ताला का वादा है। इसलिए हम सब अपने ऊपर लेके सोचें। अब एक सवाल पैदा होता है कि आज का मुसलमान कहाँ इज्जत चाहता है, उसको इज्जत कहाँ पानी है। तो एक दुखती रग, यानी मैं कहने लगी हूँ कि आप जो टॉपिक है ना, ये बड़ा ही पिंचिंग टॉपिक है। रब देख लें पिछली आयतों से कि जब इज्जत की तलाश हुई तो हमने नॉन मुस्लिमों से चाही, उन जैसे कपड़े पहनेंगे तो इज्जत, उन जैसा लाइफस्टाइल तो इज्जत, उन जैसी टॉकिंग शॉकिंग बातें चीतें तो इज्जत। अल्लाह कहते हैं आओ तुम्हें बताऊं कि इज्जत कहाँ से मिलेगी। वह तो इज्जो मंतशा, माल मांगा किन से मांगा, इनकी एड ले लो, वो एड एड्स बन गई। लेकिन हमने सोचा माल वहां से मिलेगा, कुछ नहीं मिला। तो अब अगली आयतों में अल्लाह ताला हमें लिमिटेशंस बताते हैं, गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात की क्या हदें हैं, बाउंड्रीज, बिल्कुल नहीं जायज, क्या जायज है क्या नहीं जायज, ये सब कुछ देखते जाओ तो पता चलेगा। खुलासा करते हैं पहले आयत का, आयत 28, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन अउलिया, ना बनाए ईमान वाले काफिरों को दिली दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन, अहले ईमान को छोड़कर। यहाँ लफ्ज़ देखिए औलिया आया है, वली की जमा, कल्बी दोस्त, जो एक दूसरे का राजदार भी हो और पुश्त पना भी हो, उसका साथ देने वाला, उसको हर मौके पे मिलने वाला, उसकी मदद करने वाला। पीछे हम इस पे बात कर गए कि इसके बहुत सारे मानी है, यानी गहरा दोस्त ना बनाओ किसी को, और खास तौर पे जब एक तरफ इस्लाम वाला हो, इस्लाम को नुकसान पहुंचे उस दोस्ती से, तो बिल्कुल ना करो। अच्छा, अगर हम नहीं रुकते तो वो मैं यफल जालिका, और जो कोई ये हरकत करेगा, कौन सी, ये विलायत का ताल्लुक नॉन मुस्लिम से, तो फलैस मिनल्लाहि फी शैइन, तो फिर अल्लाह के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, हाईलाइट करें, कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा अल्लाह से, फिर तुम्हारा और रास्ता और अल्लाह का और रास्ता। यानी अगर अल्लाह के दुश्मनों के साथ तुम्हारी दोस्ती है तो जाहिर है कि फिर तुम्हारा अल्लाह से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं, क्योंकि दोस्त और दुश्मन से दोस्ती करने वाला कभी खैरख्वाह नहीं होता। कहते हैं कि बंदे के दुश्मन कौन से, एक उसका अपना दुश्मन और एक उसके दोस्त का दुश्मन, ठीक। इसी तरह बंदे की दोस्ती, आप चार मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन लिख लें, आपका दोस्त कौन है, जो आपका दोस्त है, और दूसरा जो आपकी दोस्त की भी दोस्त है, ठीक है ना, दोस्तों के दोस्त भी आपके दोस्त हैं। इसी तरह आपका एक दुश्मन है जो आपका दुश्मन है, और दूसरा वो जो आपकी दोस्त का दुश्मन है वो भी आपका दुश्मन है। एक तरफ अल्लाह है और एक तरफ शैतान है, तकाबुल है। जो अल्लाह का दोस्त होगा वो शैतान का दोस्त नहीं हो सकता, और ऑपोजिट, कहा अगर ऐसा करोगे, इन दोस्तियों में हद से बढ़ोगे, तो याद रखो फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इतनी शिद्दत, अब यहाँ तक बात रोक देना तो बस हाथ ठंडे हो जाएंगे, क्या करें फिर, कैसा मामला करें। तो अब आगे एक्सेप्शंस, इल्ला, ये है अल्लाह के दीन का हुसन, हर जगह एक्सेप्शन, एवरी वेयर यू हैव एग्जेम्पशन लाइक सर्टिफिकेट, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, किससे, अन तत्तकू मिनहुम तुकात, सिवाय ये कि तुम इनसे बचने के लिए अपना बचाव करना चाहो, यानी जरूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक, मौके के मुताबिक, जिस हद तक ताल्लुक रखना पड़े वो रख लो। ये क्या होता है, अभी इसकी तफसील में बात होगी, लेकिन अभी सिर्फ ये समझ लें कि बस हालात ऐसे होते हैं कि खुले मुकाबले का भी मौका नहीं होता, तो आप दुश्मन को तरह देते हैं, इस तरह जैसे आप कहते हैं ना, यू आर बाइंग टाइम, यानी वक्त निभाओ, गुजारा कर लो, जाहरी खातर मदारत का मामला हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर कुफार से कल्बी मोहब्बत कायम करना ये जायज नहीं है। ये है वो लफ्ज़ जिसमें से अहले तशी ने तकिया लफ्ज़ को निकाला, बड़ी मारूफ टर्म है उनके टर्म में, नऊज़ुबिल्ला, और इस हद तक बोल दिया कि अपने अकायद को बदले, और कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 15-16 साल तक तकिया किया, यानी दिल में तो अबू बकर से नफरत थी लेकिन मुँह से कहते रहे प्यार है प्यार है, तो कहते तकिया करना जायज़ है, आपके लेवल से ऊपर की बात है, सिर्फ इशारा करना मकसूद है। बात कहते हैं बस कोई नहीं ना, अब दिल में बुरा है, तकिया कर लो, तकिया का लफ्ज़ सुने, एक काफ से होता है, ये काफ से, तकिया, कि कोई बात नहीं, दिल में आपको बुरा लगता है लेकिन झूठ बोल लो, अपने अकीदे को छुपा लो, अपना इस्लाम भी छुपा लो, कुछ नहीं होता, दाढ़ी भी काट लो, लफ्ज़ मोहम्मद भी नाम से उतार दो, कोई बात नहीं, अल्लाह को पता है तुम कैसे हो। इस तरह की आयतों से दलाइल, कुरान से लोग देखिए किस किस्म के दलाइल है, तो अल्लाह ताला कहते हैं वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, ये वन लिख लीजिए, आगे फिर आएगा, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। इसको पढ़ते हुए तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता है। और नफ्स का लफ्ज़ एक तो सिर्फ नफ्स के मानों में आता है ना, नफ्स अम्मारा जिसको आप कहेंगे एनिमल इंस्टिंक्ट, लेकिन नफ्स जिस्म और जान को भी कहते हैं, रूह को भी कहते हैं, यानी अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, अल्लाह से डरो, किसी और से ख्वामखा डर कर उससे ताल्लुकात ना बढ़ाओ, मोहब्बत की पींगे ना बढ़ाओ, अल्लाह का डर महसूस करो, मसलतन करना पड़े काम और बात है, लेकिन आदत ना बनाओ। क्यों डरो अल्लाह से, इसलिए कि वइलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। अब दिल में आता है कि हाँ हाँ अल्लाह हम ऐसे ही हैं, डोंट वरी, अल्लाह अगली आयत में हमारी और खुशफहमियाँ दूर करता है, कुल, आयत 29, कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम, कह दीजिए कि नबी अगर तुम इनसे छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में है, औ तुबदू हो, या उसको जाहिर कर दो, या अलमहुल्लाह, अल्लाह इसको जानता है, यहाँ क्या जाहिर करना और क्या छुपाना है, अहले किताब की मोहब्बतें, कुफार के तौर तरीकों की मोहब्बत, सालगिरह, मंगनियों और बर्थडेज और इस तरह की चीज़ों की मोहब्बत, यानी वो लाइफस्टाइल जो उनका है, तुम्हें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, अल्लाह को खूब पता है, इसलिए तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते कि हाँ, मैं उसको नहीं पसंद करती, मुझे वो चीजें नहीं अच्छी लगती। जाहिर कर रहे हो, खुल्लम खुला फासिक बने बैठे तो भी अल्लाह को पता है, और छुपा रहे हो तो भी पता है, हिसाब लेगा वो तुमसे। यही बात पीछे गुजरी ना, वाइन तो दुमा फी अनफुसिकुम औ तुखफूहु हो यो हासिबकुम बिहिल्ला। हाँ, वयालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, क्योंकि वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, अल्लाह ताला खूब कुदरत रखता है। अल्लाह के सामने हाजिर जब होना है तो उसका तरीका क्या होगा? आयत 30, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा। उस दिन का तसव्वुर करो जिस दिन हर जान अपने सामने मौजूद पाएगी हर नेकी जो उसने की होगी, यानी हर जान के नीचे मेरा नाम, मैं हर वो नेकी पाऊंगी जो मैंने की होगी। ये बात सुन के तो बंदा खुश हो जाता, अच्छा वो सारी नेकियां पता चल जाएंगी जो दूसरों को भी पता ही नहीं चलती मेरी पूरी कोशिश के बावजूद, कहाँ पता चलेंगी। लेकिन वमा अमिलत मिन सुइन, और हर बुराई जो उसने कमाई होगी, बस इसके आगे कुछ नहीं कहा, नेकी की बात हुई, मिन खैरी मुखदरा, जाहिर करके नेकियां वहां नाचती फुदकती करके दिखाई जाएंगी, और बदी जो है बस मा मिलत मिन सुइन, बुरी जो होगी वो दिखाई जाएगी। यही बात सूरह ज़िलज़ाल आयत 7 और 8 में, फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रिन यरा। पीछे भी गुजर गई बात आज ही के सबक में, हर चीज देखोगे अपनी आंख से देखोगे, मुजस्म बना दी जाएंगी नेकियां और बदियां उस दिन, सब देखोगे होगा क्या हाल। इसको सोचते वक्त पढ़ते वक्त जरा अपने आप को मैदाने मक्षर में ले जाए, तवद्दुलवन्न बैनहा व बैनहू व मदम बईदा, और हर जान ये चाहेगी कि काश इसके और इसके नामे आमाल के दरमियान एक जमाने दराज हायल हो जाता, यानी इसके और इसके गुना के बीच में दूरी हो जाए। बैनहा क्या है? नफ्स, मैं, आई एम, और बैन हु क्या है? गुना, सू, ऊपर जो लफ्ज आया, जमायर लिखना चाहे तो लिख लें, मेरे और उसके बीच में, यानी मेरे गुनाह के बीच में जुदाई पड़ जाए। दुनिया में चाहे गुनाहों को सीने से लगा के रखते थे, बर्दाश्त ही नहीं करते थे कि उसका गुनाह, वो चीज जो गुनाह का मौका दे उसको कोई मुझसे दूर करे। देखिए गुनाह कुछ जाहिर दुनिया में दिखता तो नहीं है ना, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ गैजेट्स हैं, कुछ हालात हैं, कुछ दोस्त हैं जिनकी महफिलों में हम जाके बेलगाम हो जाते हैं, काबू ही नहीं रहता, सारे खुद से किए हुए वादे टूटते हैं। क्यामत के दिन बंदा कहेगा काश मेरे और इसके दरमियान में दूरी हो जाए। ये बिल्कुल वही मजमून है जो हमें नमाज की दुआओं में भी सिखाया गया, दुआ इस्तफ्ताह, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या कमा बाअत्त बैन अल मशरिकी वल मगरिब, और इससे आगे की दुआ इधर इनको भी सिखा दें, इंशाल्लाह नमाज में आप सीखेंगे। बहुत कम लोग पढ़ते हैं ये दुआ, उसमें भी ये बंदा कहता है कि अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के बीच में मशरिक और मगरिब की दूरी डाल दे। इतना बंदा अपने गुनाहों को मनहूस समझता है, कहाँ इंजॉय करेगा उस गुनाह को जिससे इतनी नफरत हो। तो ये दुआ नमाजों में पढ़ेंगे हम सब इंशाल्लाह, ताकि हमें याद हो जाए। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह, और अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से, अपनी जात से डराता है। दूसरी बार आ गया, पुलिस से लोग डरते हैं, माशरे से डरते हैं, चोर से डरते हैं, उचक्के से डरते हैं, बातों से डरते हैं, गलत खाना खा लिया पेट खराब होगा डरते हैं, डॉक्टर से डरते हैं, सारे डर जमा कर लें और उसके ऊपर लिख लें वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह, अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है, डर जाओ, तुम्हें डर नहीं आता मुझसे, पत्थर हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, इतने कठोर हो, इतना दुनिया की मोहब्बत ने तुम्हें सख्त दिल कर दिया। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, वो तो यहूद की कहानी थी, मुसलमानों तुम्हें क्या हुआ, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, ख्वाहिशों का पानी इतना चढ़ गया कि अल्लाह से भी नहीं अब तुम डरते, इतने न डर हो गए हो कि लोगों का डर नहीं है तो अब अल्लाह का भी नहीं रहा, खूब डरो। और जब बंदे के अंदर से खून खुश्क हो जाता है ना, तो वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, डर गए हो ना, तो फिक्र ना करो, अल्लाह अपने बंदों के हक में बहुत शफीक है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। वार्निंग, उसने को तुम्हें आग के लिए पैदा किया है। क्या वो चाहता है कि तुम आग में जाओ? कभी नहीं ऐसा होगा। वो चाहता है कि मैं ऐसा ना करूं। तुम अल्लाह का डर पैदा करो। अब सवाल पैदा होता है कि अहले किताब की बातें हुई, उनके ताल्लुकात, उनसे बातें, और ये बात ख़त्म ही नहीं कर रही। हम तो उसकी तफसीर सुनना चाहते हैं, इसलिए कि टॉपिक पूरा नहीं हो रहा। अगली दो आयतों में वजह बताई जा रही है। अहले किताब से मुराद यानी कुफार के तौर तरीके, इनसे नफरत दिलाई जा रही है ना। तरीका सिखाया गया कैसे? कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी। ए नबी, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। ये है जुमला जो क्रीम है। इसके बाद आपको सारी बात समझ आएगी। रसूल के तरीके और कुफार का कल्चर साथ नहीं चल सकता। मुनाफिक के रस्ते की सबसे बड़ी रुकावट रसूल का तरीका जिंदगी। हम मुशरिकीन से और काफरों से पींगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमें नबी के तरीके पसंद नहीं। तो ये इलाज बताया जा रहा है सबक के आखिर में। चाहते हो अपने अंदर चेंज लाना तो पहले रसूल के तरीकों से मोहब्बत करो। फत्तबिउनी, हाईलाइट कर लें, मेरी इत्तबा करो, मेरे फुट स्टेप पे चलो। होगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। फिर क्या हुआ पीछे जो कर चुके हो? नो प्रॉब्लम, अल्लाह बड़ा रऊफ़ और रहीम है, माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफूर और रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। ये पहला दर्जा था इत्तेबा का। अल्लाह के नबी को रोल मॉडल बना लो तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और इससे भी बढ़ के आयत 32, जो हमारे सबक की आखिरी आयत है, कुल अतीउल्लाह वर रसूल, कह दीजिए कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। फाइन तवल्लो, फिर अगर तुम मुंह फेर लो या वो मुंह फेर लें, पीठ फेर लें, दोनों ही बातें ठीक है, तो फाइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो ऐसे काफिरों को अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता। इत्तबात ही पहले, अब इताअत है। इत्तबा क्या है? नबी कुछ कर रहे थे, उनको दे के तुम भी शुरू कर दो। ठीक है, एक दर्जा होता है ना, बच्चा माँ को कोई काम करता देखता है तो वही काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही खूबसूरत अमल है कि बगैर कहे किया। देखा घर गंदा, खुद ही साफ कर दिया, ये मतलब है। कहा नहीं, देख लिया, किसी चीज़ को करते हुए कर लिया, शुरू हो गया साथ। ये बहुत बड़ा मुकाम होता है। और अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, दूसरा दर्जा फिर, कि रसूल जो कहते हैं उसको दिल की खुशी से करो। अती का लफ्ज़ तौन से है, तोए व आइन, तौन व करहन हम आगे जाके पढ़ेंगे। खुशी से करो या ना खुशी से करो। तो इत्तबा और इताअत का फ़र्क समझ आ गया कि इत्तबा क्या है? कि नबी जो काम करते थे खुद करते थे, तुम्हें नहीं कहते थे करो, तुम भी कर लो। मसलन, अल्लाह के नबी ने कोई मकान नहीं बनाया, तुम भी ना बनाओ। उन्होंने कोई जायदाद नहीं बनाई, तुम भी ना बनाओ। जैसे ही वही का आगाज हुआ, आपने कोई दुनियावी काम नहीं किया, तिजारत नहीं की, तुम भी ना करो। और नबी की इत्तबा करनी है तो नबी ने तो अपने वक्त का एक एक लम्हा और अपनी तवानाई की एक एक रमक अल्लाह और उसके दीन के रास्ते में लगा दी। आप भी लगा दो। अल्लाह के नबी की जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाना थी, दावत थी, उसको कायम करो, तुम भी कर दो। ये है, चाहते हो जैसी जिंदगी उनकी थी करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। अब सब तो ये नहीं कर सकेंगे, पहले ही फिसल जाएंगे, फतवे लेने चल पड़ेंगे, हलाल हराम की बातें और एक और वो। तो अल्लाह कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा कर लो, सारे नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में ऐसे कुछ लोग रहे जिन्होंने अपनी जिंदगी को इत्तबा के दर्जे पे रखा। लेकिन फिर इताअत तो सबको करनी पड़ेगी, ये है आम लोगों का दर्जा। अब फिर करो जो नबी ने कहा, फिर मानो। देखिए, ये ऐसे ही है ना कि यहाँ कोई चीज़ रखी हुई है, आपको नहीं कहा गया कि इसको उठा के, या मिसाल है कि ट्रैश है, या थोड़ा कोई खाना गिर गया, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप साफ करें, आप खुद ही अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, लो मैं साफ कर लूं, मिसाल है, कर दिया, ठीक है, कोई करेगा तो अच्छा लगेगा, और पूछ के करेगा कि करनी भी है कि नहीं, इजाजत लेगा मैनेजमेंट से तो और अच्छी बात होगी, ये तो बात हो गई। लेकिन अगर किसी का नाम लेके कह दिया जाए इसको साफ कर दें, तो अब कौन सा दर्जा फिर भारी है, अब नहीं करेगा तो गुस्सा आएगा, ये है अल्लाह के दीन की खेल जिसको लोगों ने इतने उलझाओं में डाला हुआ है। खुशी से मानो दीन को, चलो जिसमें तुम्हें नहीं कहा हुआ, तुम्हें सहाबा की जिंदगी वैसी दिखती है, नबी की दिखती है, नो प्रॉब्लम। ये वो पिछली आयत का भी जवाब है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, में कितनी दुनिया लूं, क्या हलाल है क्या हराम है, का देख लो, इत्तबा के दर्जे पे जीते हो या इताअत के दर्जे पे जीते हो। कुछ लोग माशाल्लाह इत्तबा के दर्जों पे जी रहे हैं, अबू ज़र गफ़ारी की तरह, वो बस कूतेला या मूत पे जी रहे हैं, है ही नहीं उनकी जेब में एक पैनी, एक पैनी नहीं है, वो फिर भी खुश है। कैन यू बिलीव, आप कहते कोई बात नहीं, जेब में पैनी नहीं, काट तो है $10,000 का, वो भी नहीं है, खर्च किया तो उसके पैसे नहीं, आप कहते नो प्रॉब्लम बैंक में पैसे हैं, चेक काट के दे देंगे, वो भी नहीं है। आज के दौर में आप किसी ऐसे बंदे को खुश देख सकते हैं कि जिसके पास एक पैनी भी ना हो, किसी फॉर्म में भी ना हो, किसी करेंसी में भी ना हो, बस ये उसको पता हो कि है किसी के पास, जरूरत पड़ी तो मैं ले लूंगा, ये बंदा मोमिन है। इत्तबा कुछ नहीं, आखिरी चिराग भी अल्लाह के नबी के घर में जो जला था वो भी रहन पे रखा हुआ था, गिरा रखी थी और उधार का तेल था, उन्होंने वो दर्जा पसंद किया, उनको एम्प्टी हैंडेड जाना था एयरपोर्ट के लॉन्जेस से, नो प्रॉब्लम, कर लो, और ये मुकाम आएगा आते वक्त के साथ। हर वक्त आप स्क्वीज करने की सोचते हैं, कब आपके पास इतनी चीजें हो कि बस इतनी जगह पे पूरी आ जाए, क्या एक्स्ट्रा उसको निकाल के क्या फेंको, ट्रैश लगती है दुनिया जब इस्तेमाल नहीं होती, इस्तेमाल हो तो थोड़ी लगती है, ये भी नहीं है वो भी नहीं है ये भी नहीं है, ठीक है। तो इत्तबा का दर्जा नहीं है, फिर इताअत तो करनी पड़ेगी, फिर दिल की खुशी से, फिर रो नहीं बुसकना नहीं, रोते धोते फजर के लिए नहीं उठना, क्या मुसीबत है, वो हमारे बंदे की नमाज कोई नमाज नहीं है, फिर दिल की खुशी बनाओ, अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरा है, और तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे हुक्म दिया, और तूने मेरे लिए ये सारा मामला रखा, तो मैं खुश हूँ। तो दीन पे अमल करो तो हंसते हुए करो, रोते मुंह बना के ना करो, जहर लगता है हमें वो बंदा जो काम भी कर दे और साथ हमें मुंह से बोड़ बोड़ भी करता रहे, कभी अपने बच्चों पे आपको गुस्सा आया होगा, काम भी कर देते हैं फिर भी एहसान ही जताते हैं, शौहर ही चाय मांग ले और बीवी जाके लाके धड़म से रखे टेबल पे और आधी चाय गिर जाए प्लेट में, खुशी होगी उसको। हम जो रोती भी सकती हुई नेकियां करते हैं और मारी बांधी करते हैं, अल्लाह तो बेनियाज है, उसको क्या परवाह है, लेकिन हम अपने ऊपर रखें। वल्लाही सहाबा किराम ऐसे थे, एक मौके पे एक सहाबी दूर से आए अल्लाह के नबी के पास, उस वक्त अल्लाह के नबी के कुर्ते में बटन नहीं थे, यानी यहां से आपका गिरेबंद खुला हुआ था, इसके बाद सारी जिंदगी उस सहाबी ने अपने कुर्ते में बटन नहीं लगाए, का नहीं, अल्लाह के नबी का गिरेबान खुला था तो मैंने नहीं लगाने, वो एक दफा आए देखा बस वो मंजर नजर में जच गया, कहा मैंने वैसे ही बनना है। नबी सल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए, हजरत आयशा की आदत थी कि वो अल्लाह के नबी की मतलब बाल बनाती थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा मेरी मांग निकाल दो, तो कहा अल्लाह के नबी आप तो पहले कोई नहीं थे निकालते, अब क्यों निकाल रहे हैं, कहा इसलिए कि मैंने यहां आके देखा कि यहूद मांग नहीं निकालते, मैं अपना अमल उनसे मुख्तलिफ चाहता हूँ, तो बीच में मांग निकलवाई आपने, अब ये कोई फतवा है, कोई इसके ऊपर कोई डांटेगा, कोई फिर आप फतवा लेंगे जी इधर क्यों करें और इधर क्यों करें, जो फी जमाना करते हैं अहले किताब तुम ना करो, ये है ईमान, ये है इत्तबा। अब ये तो आयतें पूरी की हमने, लेकिन इस मौजू के ऊपर एक जेरे हाथ से बात करेंगे थोड़ी सी।
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين